ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। तनहू के आबू खैरनी स्थित एना पहाड़ा में मरसांगदी नदी में बस गिरने से हुई 27 भारतीय पर्यटकों की मौत, घायल 16 लोगों का त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में चल रहा है इलाज। सरकारी रकम दुरुपयोग संबंध में जांच करने के लिए गठित संसदीय जांच समिति ने गोरखा मीडिया नेटवर्क के पूर्व संचालक रवि लामिछानी से की पूछताछ। भारत के केदारनाथ के नजदीक हेलीपैड में टूटने से मलबे में दबने से हुई 4 नेपालियों की मौत और बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारत और बांग्लादेश में हुई कम से कम 14 लोगों की मौत, 30 लाख लोग हुए विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। तनहू की आबू खैरनी गांवपालिका 4 एना पहाड़ा में आज हुई बस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत हो गई है। पोखरा से काठमांडू की ओर जा रही UP-53 FT-7623 नंबर की भारतीय यात्रुवाहक बस सड़क से मरसांगदी नदी में गिरने से ये हादसा हुआ। हादसे में अन्य 16 लोग घायल हुए हैं। घायलों को नेपाली सेना की हेलीकॉप्टर से इलाज के लिए काठमांडू लाया गया है। बता दें कि घायलों का महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। सशस्त्र प्रहरी बल के सह प्रवक्ता शैलेंद्र थापा ने बताया कि बस में चालक और सह चालक सहित 43 यात्रु सवार थे। सहकारी संस्था बचत रकम के दुरुपयोग पर संसदीय जांच विशेष समिति ने आज गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व निदेशक और प्रबंध निदेशक रवि लामिछानी से पूछताछ की है। समिति के आज की बैठक में समिति की प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न सहकारी संस्थाओं और कंपनियों के रकम के दुरुपयोग में शामिल आरोपियों पर नेशनल इंडिपेंडेंट पार्टी के अध्यक्ष लामिछानी, जो पूर्व उप प्रधानमंत्री भी थे, उनसे पूछताछ की गई है। ये जानकारी समिति के अध्यक्ष सूर्य थापा ने दी। समिति के सचिव बबीता मिश्र के अनुसार आज ही गोरखा मीडिया नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व संचालक छविलाल जोशी से भी पूछताछ की गई है। विभिन्न सहकारी और कंपनियों का रकम दुरुपयोग मामले में शामिल आरोपित व्यक्तियों से समिति पूछताछ व बयान ले रही है। गौरतलब है कि जांच समिति समस्याग्रस्त होने और सामाजिक रूप में सवाल उठाए जाने के बाद सहकारी संस्थाओं का अध्ययन कर रही है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कहा कि संस्कृत की लोकप्रियता नेपाल और भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बढ़ी है। जयंतु संस्कृत द्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह में राष्ट्रपति पौडेल ने कहा कि सभी भाषा भाषियों को सम्मान सहयोग करने से प्रत्येक भाषा का संरक्षण और विकास संभव है। कार्यक्रम में विभिन्न व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। सरकार ने काठमांडू तराई मधेस द्रुत मार्ग सड़क परियोजना के लिए मकवानपुर में करीब 33,975 वर्ग मीटर जमीन प्राप्ति के लिए स्वीकृति देने का निर्णय किया है। कल हुई मंत्रिपरिषद बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह बैठक में नेपाल ऑयल निगम लिमिटेड जीतपुर सिमरा उपमहानगर पालिका में करीब 5 बीघा जमीन प्राप्ति के लिए स्वीकृति प्रदान करने, ललितपुर महानगर पालिका को गणतंत्र कोरिया के चीवरगुन नगर से भगिनी संबंध स्थापित करने की पूर्व स्वीकृति प्रदान करने और सोशल मीडिया के तौर पर संचालित टिकटॉक को शर्तों के साथ खोलने का निर्णय किया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
नेपाल टेलीकॉम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गुरुवार देर रात भारी बारिश के कारण भारत के उत्तराखंड के केदारनाथ के पास फाटा हेलीपैड के नजदीक खाट गदेरे में मलबे में दबने से चार मजदूरों की मौत हो गई। चारों नेपाल के नागरिक हैं। जिला आपदा प्रबंध अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि गुरुवार देर रात करीब 1:20 पर भारी बारिश से फटा हेलीपैड के समीप खाट गदेरे के पास चार लोगों के मलबे में दबे होने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा, सूचना मिलते ही घटनास्थल के लिए राहत एवं बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू टीम को भेजा गया। डोलिया देवी मार्ग अवरुद्ध होने के चलते एसडीआरएफ की टीम करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर घटनास्थल पर पहुंची थी। आपदा प्रबंध अधिकारी ने बताया, घटनास्थल पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि भारी बारिश के कारण वहां जेसीबी मशीन का पहुंच पाना संभव नहीं है। एसडीआरएफ के जवानों ने खुदाई करके रेस्क्यू शुरू किया और चारों शवों को मलबे से बाहर निकाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों को सीमा के आधार पर छूट देने के हिसाब से आयन संशोधन न करने का प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से अनुरोध किया है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल ने बताया कि आज आयोग ने समिति को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 में संशोधन के लिए बनाए गए विधेयक में भ्रष्टाचार के अपराधों के लिए छूट प्रदान करने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। समय सीमा के आधार पर उन्मुक्ति देने के हिसाब से आयन में संशोधन करने की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाने के लिए समिति को पत्राचार किया गया है। परराष्ट्र मंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य डॉ आरजू राणा देउवा ने कांग्रेस केंद्रीय समिति की बैठक में बताया कि उनकी भारत यात्रा सफल रही। आज हुई कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बताया कि भाद्र 2 से 6 गते तक उनका भारत दौरा सफल रहा। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने नेपाल और भारत के बीच आपसी सद्भाव को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि राजनीतिक स्थिरता और सुशासन के लिए 2 बड़े दल मिलकर सरकार बनाने का काम हुआ है। गृहमंत्री लेखक ने जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा के प्रमुख प्रशासकीय भवन का आज जनकपुर धाम में शिलान्यास के दौरान कहा कि 2 बड़े दलों ने सरकार बनाने के कुछ ही दिनों में प्रमुख प्रतिपक्षी दल के समर्थन में 18 वर्षों तक निष्कर्ष पर न पहुंचे संक्रमणकालीन न्याय संबंधी कानून को निष्कर्ष तक पहुंचाने का काम किया है। गृहमंत्री लेखक ने आज ही धनुषा जिला स्थित सरकारी कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों तथा कर्मचारियों को ईमानदारी पूर्वक काम करने का निर्देश किया। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश में बारिश और बाढ़ के कारण करीब 36 लाख लोग फंसे हुए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। राजनीतिक अस्थिरता के बीच बांग्लादेश को अब बाढ़ के कहर से भी जूझना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से वहां करीब 30 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। आपदा प्रबंध मंत्रालय के अनुसार बाढ़ से घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और कई इलाकों में सड़कें टूट गई हैं जिससे राहत प्रयासों में बाधा आ रही है। बारिश और बाढ़ से फानी, मौलवी बाजार, हबीगंज, कोमला और चटगांव के इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। बता दें कि भारत के पूर्वी राज्य त्रिपुरा में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और बाढ़ से 12 लोगों की मौत हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। तनहू के आबू खैरेनी स्थित एना पहाड़ा से मरस्यांगदी नदी में बस गिरने से हुई 27 भारतीय पर्यटकों की मौत। घायल 16 लोगों का त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में चल रहा है इलाज। सहकारी रकम दुरुपयोग संबंध में जांच करने के लिए गठित संसदीय जांच समिति ने गोरखा मीडिया नेटवर्क के पूर्व संचालक रवि लामिछानी से की पूछताछ। भारत के केदारनाथ के नजदीक हेलीपैड के टूटने से मलबे में दबने से हुई 4 नेपालियों की मौत और बाढ़ और भूस्खलन के कारण भारत और बांग्लादेश में हुई कम से कम 14 लोगों की मौत, 30 लाख लोग हुए विस्थापित। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।